आहान का मुंह फुला हुआ था क्योंकि रौनक की वजह से उसे भी इंजेक्शन लग गई थी। वो बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। कहीं ना कहीं वो रौनक से बदला लेना चाहता था। ये सुनते ही रौनक मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, अच्छा अगर तुम्हें अकेले ही शॉपिंग करनी थी तो तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए? आहान प्लीज, क्या तुम मुझे अपने पसंद के कपड़े में ही दिला सकते? अब जैसे ही रौनक ने अपनी हाथ को फोल्ड करते हुए बड़े ही फ्लर्ट अंदाज में ये पूछा, वैसे ही उसे देखते ही आहान के दिल में तो गिटार बजने लगते हैं। वो तुरंत ही रौनक के पीछे पीछे चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा चलो मेरी जान, मैं तुम्हें खुद अपनी पसंद की ड्रेस उठाकर देता हूँ, फिर तुम ट्राई कर लेना। ये बोलकर देर ना करते हुए अब आहान ने भी रौनक के लिए कुछ साड़ियाँ, ड्रेस वगैरह जो भी उसे पसंद आ रहा था उसे फटाफट से उठाया और रौनक के हाथों में थमा दिया। फिर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ ध्रुव के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं ध्रुव भी आहान को हैरानी से देखने लगता है। ध्रुव एकदम से उसे छेड़ते हुए, मानना पड़ेगा तुझे, इतनी आसानी से अपना गुस्सा भुलाकर जल्दी अपनी बीवी के पीछे पीछे चला गया। ध्रुव की बात सुनकर आहान एक पल के लिए छेप गया और अगले ही पल वो हल्की स्माइल करते हुए बोला, क्या करूं यार, उसमें तो मेरी जान बसती है। फिलहाल अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? शायद तुम भूल रहा है, आस्था भाभी ने स्पेशली बोला है कि हम सबको कुर्ता पजामा पहनना है। हमें पूरा भजन वाले लुक में आना है। बड़ी सी भागवत हमारे माथे पर भी लगेगी। पूरी रात हम लोग जागरण करने वाले हैं, तो चलो फटाफट से हम लोग अपने लिए कुर्ता पजामा देख लेते हैं। वहाँ देखो, आकाश और सुमित भैया मुझे दूर से ही नजर आ रहे थे। देखो वो अपने अपने लिए कुर्ता पजामा ही पसंद कर रहे थे। ध्रुव और आहान भी वहां पहुंच गए और कुर्ता पजामा देखने लगे। अब ध्रुव और आहान ने जैसे ही आकाश और सुमित को कुर्ता पजामा खरीदते हुए देखा तो दोनों ही उनके पीछे जाकर खड़े हो गए और आहान तपाक से बोले, सुमित भैया, आकाश भैया, हम लोगों को भी कुर्ता पजामा चाहिए। आप लोग तो काफी सीनियर सिटीजन हो हमसे, तो आप लोग हमारे लिए अच्छे अच्छे कुर्ते पजामे पसंद करने में हमारी मदद कर दो। उसकी इस बात पर अगले ही पल सुमित और आकाश दोनों ही भड़क गए। दोनों ही घूर कर आहान को देखने लगे और तमतमाते हुए बोले, सीनियर सिटीजन मतलब? तू कहना क्या चाहता है? हम लोग तुझसे सिर्फ एक दो साल ही बड़े होंगे। हम दोनों तुम दोनों से ज्यादा बड़े नहीं हैं, और तूने तो हमें एकदम से सीनियर सिटीजन का खिताब दे दिया, बेवकूफ। उनका जवाब सुनकर अगले ही पल ध्रुव और आहान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सिचुएशन संभालते हुए जैसे तैसे वो दोनों ने अपनी हंसी छुपाई। फिर आहान बात बदलते हुए बोला, अरे नहीं नहीं आकाश भैया, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है, तो आप लोग हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। उसके इस बात पर सुमित उसे घूरते हुए एकदम से कहा, फिलहाल तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ और अपनी अपनी साइज के कपड़े उधर जाकर देख लो, ठीक है? हम लोगों का मूड मत खराब करो। सुमित की आवाज में गुस्से को भांपते हुए आहान और ध्रुव ने एक दूसरे को कंधे उचकाते हुए देखा, जैसे कहना चाहते हो शायद इनका अपनी अपनी बीवियों से झगड़ा हुआ है और पूरा गुस्सा हम दोनों मासूम बच्चों पर उतार रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो दोनों चुप ही रहे। वो सिर्फ बड़ों की बात मान सकते थे, उनके मुंह पर कुछ नहीं बोल सकते थे। वहीं दूसरी ओर अरमान भी सीधा आस्था को लेकर कहीं और नहीं, इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आ चुका था जिसमें ये सब कपल्स मौजूद थे। वहीं आस्था, जिसका इरादा आज अरमान को पूरी तरह से इरिगेट और परेशान करने का था, क्योंकि जिस तरह अरमान ने रात को अंश को छुपाकर आस्था को परेशान किया था, उस बात को लेकर आस्था इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाली नहीं थी। इसीलिए पहले ही उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ चुका था। अब देर न करते हुए वो फटाफट कपड़ों वाले सेक्शन में चली गई और अरमान को देखते हुए बनावटी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर सिंघानिया, अब आप ही मेरे लिए कुछ कपड़े निकाल दीजिए। आस्था के मुंह से ये शब्द सुनकर अरमान का माथा झनझना उठा। अरमान गुस्से में तमतमाते हुए, तुम इस तरह से मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती, और शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो मुझसे थोड़ा अपनी औकात में रहकर बात किया करो। और हाँ, मेरे सामने इतना एटीट्यूड झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी दादाजी की वजह से तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ इतनी फ्री होकर बात करोगी और मुझे बोलोगी कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट करूँ। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए कपड़े पसंद करता फिरूंगा। अरमान की इरिटेटिंग बातें सुनकर आस्था के तन बदन में आग लग गई। फिर वो अरमान पर बरस पड़ी, आस्था गुस्से में आईब्रो चढ़ाते हुए, ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मेरे पति नहीं हैं, लेकिन आप ही वो इंसान है जिसने मेरे पति को भगाया है, और जब तक आप मुझे मेरा पति, जो मुझसे बेहद प्यार किया करते थे, उन्हें ढूंढ कर नहीं लाते, तब तक आपको उनके सारे काम करने होंगे। आपने जो भी जिम्मेदारी ली है वो आपको निभानी ही होगी, मिस्टर सिंघानिया। आस्था का जवाब सुनकर अरमान ने उसे अजीब नजरों से देखा। अरमान को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पाया। अपना गुस्सा दबाते हुए उसने रैंडमली तरीके से जो भी ड्रेस उसके हाथ लगी फटाफट से उठाकर आस्था के हाथ में थमा दी और बेपरवाही से बोला, लो ये सारी ड्रेस खरीद लो, समझी? और पैसों की चिंता मत करना। वैसे भी मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों के लिए इस तरह की छोटी मोटी चीज खरीदना कितना बड़ा एक्सपेंसिव होता है। हकीकत यह है कि इतनी महंगी साड़ियाँ तुमने अपनी जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होंगी। इसीलिए आज तुम्हारे पास अच्छा चांस है, तो तुम आराम से दिल खोलकर जितनी चाहे शॉपिंग कर लो। मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के लिए भी शॉपिंग कर लो, और साथ ही साथ उस ओल्ड लेडी की तीनों गरीब बेटियों के लिए भी कुछ खरीद लो, क्योंकि आज तुम्हें अच्छा खासा मौका मिला है और अरमान सिंघानिया खुद तुम्हारे खर्चे उठा रहा है। तो आज के दिन इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है दिल खोलकर करो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मेरा ही है। अब जैसे ही अरमान ने ये शब्द कहे, वैसे ही आस्था को उसकी बात सुनकर झुंझलाहट हुई। उसने सिचुएशन को भांपते हुए खुद के इमोशंस को संभाला, क्योंकि उसका असली इरादा तो अरमान को इरिटेट करने का था, और वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी खूबसूरत कमर अरमान को कितना इफेक्ट करती है। यही सोचते हुए आस्था ने मुस्कुराते हुए एक साड़ी उठाई और नाराज होकर अरमान को देखते हुए अपने मन में, आपका एटीट्यूड, आपका घमंड आज मैं तोड़कर ही रहूंगी, ये सोचते हुए आस्था की आंखों में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। आस्था को नजरअंदाज करते हुए अरमान ने सोचा, जब तक ये लड़की अपने लिए कपड़े खरीद रही है तब तक क्यों ना मैं एक जगह बैठकर थोड़ा काम कर लूं और ऑनलाइन मीटिंग वगैरह अटेंड कर लूं, क्योंकि यहाँ खड़े रहकर खामखा मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ये सोचते हुए अरमान जल्दी से एक तरफ चला गया। वहीं दूसरी ओर कपड़ों के क्षेत्र में इस वक्त ध्रुव और आहान दोनों ही अपनी अपनी पसंद का कुर्ता पजामा निकालने में लगे हुए थे, और दोनों ही पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिरकार वो कैसे और क्या खरीदे, क्योंकि वो दोनों जन्माष्टमी के लिए पहली बार कुर्ता पहनने वाले थे। वो दोनों खुश होकर कुर्ते देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें कुर्ता पजामा थोड़ा ज्यादा ही ओवर लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े चुने, ऐसे कपड़े तो उन्होंने कभी पहने ही नहीं थे। इसीलिए वो आकाश और सुमित को बार बार आस भरी नजरों से देख रहे थे ताकि उनके अकॉर्डिंग कपड़े खरीद सके, लेकिन आकाश और सुमित उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने अपने कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे। ये देखते ही आहान अगले ही पल थोड़ा सा इरिटेट हो गया और अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, जरूरी है क्या ये इस त्योहार में कुर्ता पजामा पहनना? अरे हम नॉर्मल सूट भी तो पहन सकते हैं, या फिर मैं तो सोच रहा हूँ हाफ कैप्री और ऊपर से शर्ट डाल लूं, उसमें तो मैं पूरी रात बैठ सकता हूँ, और वैसे भी पूरी रात तो सिर्फ कम्फर्टेबल कपड़े ही पहन सकता हूँ।
आहान की बातें इस वक्त आकाश और सुमित के कानों में भी जा रही थी, और वो दोनों भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कन्फ्यूज थे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या खरीदें। फिलहाल वो दोनों एक दूसरे को कन्फ्यूजन से देखने लगे। तभी ध्रुव ने अचानक तंज कसा, आकाश भैया, अगर अरमान भाई की याददाश्त ठीक होती और वो पहले जैसे होते तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस सिचुएशन से निकलने का हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर बताते। ध्रुव की बात सुनकर आहान तुरंत एक्साइटेड होकर बोला, तो इसमें क्या दिक्कत है? अरमान भाई की याददाश्त चाहे ठीक हो या ना हो, लेकिन है तो वो हमारे अरमान भाई ही ना। तुम देखना, वो इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं अभी उन्हें कॉल करके यही बुला लेता हूँ। आहान के मुंह से ये शब्द सुनकर आकाश और सुमित ने एक दूसरे को ठिठक कर देखा, और अगले ही पल वो हड़बड़ाते हुए आहान के सामने जाकर खड़े हो गए और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए देखा। आकाश, आहान को चेतावनी देते हुए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है तू? तू अरमान को यहां बुलाएगा? अगर अरमान यहां आ गया तो तू जानता है ना हमारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। उसे तो यही लगेगा कि हम लोग इस वक्त उसका दिया हुआ कामकाज छोड़कर उल्टा यहां इधर उधर घूमकर शॉपिंग कर रहे हैं। तू भूल गया उसने हमें क्या क्या काम सौंपे थे? और फिलहाल तो हमारा सबसे पहला काम था उस वायरस का पता लगाना। भले ही हमने ये तो पता कर लिया कि ये वायरस किसने बनाया, लेकिन हम अरमान को ये बात नहीं बता सकते, क्योंकि अरमान की नजरों में तो उसका गुरु आज भी एकदम महान है। याद नहीं सुमित के होटल में वो इतने सालों बाद जब अपने गुरु से मिला था तो उसने किस तरह का बर्ताव किया था? यहां तक कि उसने अपने हाथों से कुछ होटल स्टाफ की जान भी ले ली थी, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को अच्छा फील कराने के लिए। वो उसके लिए पूरी तरह पागल है। ये सुनते ही वहां के माहौल में अजीब सी चुप्पी छा गई, लेकिन तभी आहान की नजर एकदम से सामने की ओर पड़ी और उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसने वहां अरमान को देखा था। अरमान वहां एक बड़ी सी चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर नजरें टिकाए हुए आराम से अपना काम कर रहा था। ये देखते ही आहान सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उसके दांत आपस में किटकिटाने लगे। आहान ने घबरा कर सोचा, अरमान भाई ये यहां कैसे आ गए? ये क्या हो गया? अरमान भाई यहां कैसे आ सकते हैं? अब क्या होगा? अगर उन्हें पता चल गया कि हम सब यहां हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सोचते हुए आहान की जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वो बाकी सबको सचेत करना चाहता था कि अरमान ऑलरेडी यहीं मौजूद है, लेकिन तभी ध्रुव ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नोटिस करते हुए उसकी आंखों का पीछा किया तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसकी टांगें कंपकपाने लगी। वहीं आकाश और सुमित उनकी हालत देखकर एकदम कंफ्यूज हो गए कि आखिर इन दोनों नमूनों को अचानक क्या हो गया, ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अरमान पर पड़ती है तो वो दोनों एकदम से हैरान हो गए और उनके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्योंकि अरमान की नजरें भले ही अभी तक अपने लैपटॉप पर थीं, लेकिन अगर उसने जरा भी गर्दन उठाकर इधर देखा होता तो वो उन सबको आसानी से देख सकता था। इसलिए वो सभी बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि वो किसी भी तरह से अरमान की नजरों में नहीं आना चाहते थे। यही सोचकर उन्होंने फटाफट से उल्टे सीधे कपड़े उठाए, जो भी कुर्ता पजामा हाथ लगा ले लिया और अपनी अपनी बीवियों के चेंजिंग रूम में ही घुस गए। अब अरमान ने जैसे ही हल्का शोर शराबा सुना तो वैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, लेकिन जब उसे अपने सामने कोई दिखाई नहीं दिया तब वो फिर से अपने काम में मग्न हो गया। वहीं आकाश सीधे रश्मि के चेंजिंग रूम में पहुंच चुका था। रश्मि उस वक्त आकाश की दी हुई साड़ी ट्राई कर रही थी। पेटी कोट और ब्लाउज वो पहले ही पहन चुकी थी, लेकिन वो ठीक से साड़ी बांध नहीं पा रही थी और अचानक आकाश के वहां आने पर वो एकदम से घबरा गई। दूसरी ओर इधर जैसे ही आहान चेंजिंग रूम में आया वैसे ही रौनक भी बुरी तरह से घबरा गई और वो चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने आहान का चेहरा देखा तो वो इधर उधर देखते हुए अपनी घबराहट को शांत करने लगी। फिर वो खुद को संभालते हुए एकदम से आहान पर बरस पड़ी। ये लेडीज चेंजिंग रूम है आहान, तुम्हें यहां कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? वहीं आहान ने रौनक को आधे अधूरे कपड़ों में देखकर एकदम से होश संभाला। उसकी नीयत लड़खड़ा गई। डर और घबराहट में उसने जाकर रौनक को गले से लगा लिया और एकदम से बोला, जान प्लीज मुझे मत रोको, तुम नहीं जानती इस वक्त मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ी हुई है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आहान की आवाज में घबराहट महसूस करके रौनक एक पल के लिए दंग रह गई और अगले ही पल वो उसे संभालते हुए पूछने लगी, डर लग रहा है लेकिन क्यों, क्या हुआ? तब आहान जल्दी से बोला, अरमान भाई यहाँ आ गए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। जब तक अरमान भाई यहाँ रहेंगे हम उनकी आंखों के सामने नहीं आ सकते। तुम जानती हो ना, अगर हम उनकी नजरों में आ गए तो कहीं वो हम सबको अलग ना करवा दे। तुम मेरी इस बात को समझ रही हो ना? आहान के मुंह से ये बात सुनकर रौनक भी परेशान हो गई, लेकिन ये सब कहते कहते आहान का हाथ कब रौनक की गर्दन पर चला गया और उसके हाथ उसकी नंगी पीठ पर घूमने लगे, उसे एहसास ही नहीं हुआ। अब ये महसूस करते ही रौनक ने भी शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं।